ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. சாந்தி கே சாகர். பாப் கி மகிமா அப்பரம் அபார். तो बाबा की महिमा तो अपरम अपार है, पर उसका आधार क्या है? परमात्मा की महिमा अगर मैं पूछूं तो क्या है परमात्मा की महिमा? शांति का सागर है और जी सुखदाता है, हाँ, पतित पावन है, शांति का दाता है, सुख का भंडार है, पतित पावन है, ज्ञान का सागर है जी, प्यार का सागर है। तो अगर इन चार बातों को अगर सामने रख ले, में चलो महिमा तो अपरम अपार है, तो ये महिमा प्रैक्टिकल में परमपिता परमात्मा की महिमा का आधार क्या है? भगवान की ये महिमा पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है। चलो इन दो महिमा को पहले ले लें। प्यार का सागर है, शांति का सागर है। चलो ये शांति का दाता है, पतित पावन है, सुख दाता है, प्यार का सागर, शांति का सागर है। शांति, प्रेम, पवित्रता और सुख, ये महिमा परमात्मा की प्रैक्टिकल करने वाला कौन? प्रैक्टिकल करने वाला, ये महिमा का आधार, यानी महिमा किन के कारण गाई हुई है? बाबा के बच्चों के कारण। कौन से बच्चों के कारण? बच्चों में भी अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, तो हम अपने आप से पूछे मैं कौन सा बच्चा हूं? सच्चा बच्चा हूं, पक्का बच्चा हूं, भगत बच्चा हूं, ज्ञानी बच्चा हूं, कौन सा बच्चा हूं? क्योंकि हम परमात्मा की महिमा का आधार संगम युग पर जो परमपिता परमात्मा ने कर्तव्य किए हैं उसकी यादगार है। ये तो सुना है ना, रोज मुरली में सुनते हैं। जितने भी त्योहार हैं या जो भी परमात्मा की महिमा है, उस महिमा का आधार संगम युग पर परमपिता परमात्मा ने जो कर्तव्य किए, तो उस कर्तव्य की यादगार और फिर जो उस कर्तव्य को प्रैक्टिकल में करने वाले अपने जीवन में एग्जाम्पल और सैंपल बनने वाले, उनकी फिर यादगार त्योहार है, जिसको बाबा ने कहा दशहरा है, रक्षाबंधन है। ये त्योहार किनके कनेक्शन से हैं? जिन्होंने अपने जीवन में परमात्मा के कर्तव्यों को व्यवहार में लाया है। त्योहार है व्यवहार और संस्कार का यादगार, और महिमा है परमात्मा के कर्तव्य की यादगार। किन पर की वो? जिसके आधार पर फिर वो त्योहार बन गए, यादगार बन गया। तो परमात्मा ने जो कर्तव्य किया, प्यार का सागर परमात्मा, ये किन के लिए? परमात्मा सचमुच प्यार का सागर परमात्मा किन के लिए? भक्तों के लिए है या बच्चों के लिए है? भक्तों के लिए या बच्चों के लिए? भक्तों के लिए नहीं है, नहीं, भक्तों के लिए। थोड़ा थोड़ा समझ विचार करना, आप अपने आप को कौन सी लाइन में रख रहे हैं? फिर भक्तों के लिए वो रहम का भंडार है, दया का सागर है, बच्चों के लिए प्यार का सागर है। तो दया और प्यार में क्या फर्क होता है? मर्सी और लव में क्या फर्क है? तो हम अपने आप से पूछे, मैं मुझे परमात्मा की दया चाहिए या प्यार चाहिए? प्यार चाहिए। प्यार किन को मिलता है? कौन से बच्चे को? सच्चे बच्चे को। सच्चा किसको कहा जाता है? सच्चा बच्चा आज्ञाकारी होता है, आज्ञाकारी और वफादार बच्चा जो होता है वो कहते हैं सच्चा बच्चा है। तो परमात्मा की आज्ञा और वफादारी से पालन करना, आज्ञा का पालन है, एक है, किसी समय किया किसी समय नहीं किया, किया अपनी महिमा के लिए किया, थोड़ा थोड़ी जो है वातावरण को ठीक करने के लिए कोई बात की, आज्ञा का पालन किया, पर सचमुच अपने जिगर से, निश्चय से, लगन से और समझ से कि इस आज्ञा का पालन करने से मेरे को प्रैक्टिकल में फायदा क्या है? और आज्ञा परमात्मा क्यों देते हैं? क्योंकि परमात्मा का प्यार है बच्चों को, जो भी उनके पास है ना उसका मालिक बना देने का। तो जब पहले से अगर कोई मालिक बन गए तो उनके पास सब जो परमात्मा की शक्तियां हैं, जो परमात्मा के गुण हैं, जो पिता परमात्मा की महिमा है, वो उनकी महिमा फिर इतनी यादगार बन जाती है कि परमात्मा के बदले फिर मनुष्य आत्माएं, जिस आत्मा ने परमात्मा पर समर्पण किया उनके बदले बच्चे की महिमा का गायन करते हैं। अब ये सारी जो भूल है, भूल तो नहीं है, है तो सच। इतना बाबा बार बार कहते हैं कृष्ण की महिमा नहीं है, शिव की महिमा है, कृष्ण की महिमा शिव की नहीं है, पर ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने शिव बाबा के साथ इतना गहरा कनेक्शन और पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट बनाया, जो सारे कल्प जो शिव की महिमा है वो श्री कृष्ण पर गाई जाती है। ये सीक्रेट समझा? और परमात्मा को बार बार कहना पड़ता नहीं वो श्री कृष्ण नहीं है, ये मैं हूं। तो श्री कृष्ण की आत्मा ने वो परम पिता परमात्मा से जो ज्ञान लिया उस ज्ञान का स्वरूप बन गया। तो महिमा फिर, और जिन देवी देवताओं ने परमात्मा की श्रीमत का पालन करके अपने जीवन में उन गुणों की धारणा की तो उसके आधार से वो फिर भगवती भगवान कहे जाने लगे। मनुष्य भगवान को भूल के फिर भगवती भगवान, फिर श्री लक्ष्मी भगवती, श्री नारायण भगवान, श्री सीता भगवती, श्री राम भगवान, और इतनी महिमा, इतना, इतनी उनका गौरव, इतनी उनकी पूजा, इतनी उनकी यादगार, वो ये है परमपिता परमात्मा के प्यार का प्रैक्टिकल उपहार। जिन्होंने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया तो परमात्मा बड़ा रॉयल है और भोला भी है, इसलिए भोला भंडारी कहा जाता है। भंडारा भी भरपूर है, खुले दिल से देता है और भोला भी है, परंतु रॉयल होने के कारण कख दे करके लख मिलता है, देते कख को लख बना देता है, कौड़ी को हीरा बना देता है, कांटे को फूल बना देता है, कमी को बदल निकल करके शक्तिशाली बना देता है। परंतु प्यार का मतलब है पहले से सब कुछ तैयार करके दे देना। ये जो देवी देवताओं को अभी हमको जो बाबा प्यार और मर्स, प्यार और दया में अंतर क्या है, अभी संगम पर ही सिर्फ परमात्मा का प्यार मिलता है। संगम पर परमपिता परमात्मा का प्यार आत्मा को मिलता है, तो परमात्मा हमारे लिए सब कुछ पहले से स्वर्ग तैयार करके रख देता है। प्यार का उपहार है स्वर्ग की सौगात। जैसे जिसके साथ प्यार होता है उसके लिए सब कुछ पहले तैयार करते हैं। घर में देखो छोटे बच्चे आने वाले हो ना, तो प्यार है तो पहले से छोटे छोटे उनके उनके खिलौने मंगा के रखेंगे, उनके कपड़े सिला के रखेंगे, उनके लिए प्लान बनाएंगे। अभी तो सामने बेबी आया भी नहीं है और सब कुछ पहले से तैयार है। अभी वो स्कूल में ही पढ़ रहा है, पहले से यूनिवर्सिटी में कौन सी में जाएगा कौन से कॉलेज में पढ़ाएंगे, पहले से प्लान बनाते हैं। तो प्यार का सबूत है पहले से सब कुछ तैयार करके उपहार में दे देना। प्यार का सबूत है गले का हार बना देना। प्यार का सबूत है उनको कोई किसी प्रकार की परिस्थिति में सामना करने की शक्ति देने के साथ साथ खुद वहां प्रेजेंट हो जाना, जो कर्तव्य करते समय उस उनको लगे कि मैंने जीत पाई, मेरा मेरी मेरी जीत है, उत्साह दिलाने के लिए। परंतु जीत पाने की शक्ति खुद आगे हो करके, यानी जैसे लड़ाई राम और रावण की कही जाती है, कृष्ण और कंस की कही जाती है। कहने का मतलब जो कृष्ण बनने वाले हैं उनकी वास्तव में नहीं, परंतु क्योंकि भक्ति में राम को भगवान कहा, श्री कृष्ण को भगवान कहा, तो परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान अपने बच्चों की खातिर बच्चों के द्वारा विजय प्राप्त कराते हैं, परंतु पहले माया के को खत्म करने के लिए अपना उस आत्मा के द्वारा अपनी दिव्यता का दर्शन कराते हैं। ये थोड़ी मैं और गहरी बात बताने वाली हूँ। मिसाल के तौर पर किसी के अंदर क्रोध है, अब क्रोध से को जीतना है, क्रोध को जीतना है, तो क्रोध को जीतने के लिए क्रोध सामने आएगा तो जीत पाएंगे? क्रोध के सामने आग के सामने आग रखेंगे तो आग बुझेगी? आग को खत्म करने के लिए उसकी अपोजिट शक्ति चाहिए ना, जल चाहिए ना। आग पानी में डालो तो भी आग बुझेगी, और आग पर पानी डालो तो भी आग बुझेगी। थोड़ा सा आवाज होगा परंतु शांत हो जाएगी। पानी में डाल थोड़ा सा ऐसा, तो थोड़ा लगता है आवाज होती है, यानी थोड़ा अप्रूर होती है, हलचल होती है, परंतु वो शांत हो जाते हैं। तो शांति और प्रेम ये दिव्यता का दर्शन है। क्रोध वाले के सामने हम क्रोध का भूत बन के जावे, भड़क जाएगी ना आग। तो परमात्मा के गुणों का स्वरूप किनका बनेगा? जो उस समय परमात्मा की याद में होंगे। अब याद में होंगे तो उनकी दृष्टि में उस वक्त क्या होगा? ये बाबा कहता है तुम दर्श मर्सी के सागर, रहम के सागर बनो। ये बाबा की शिक्षा है बच्चे, क्षमा के सागर बन जाओ। ये बाबा की शिक्षा है तुम ब्राह्मण हो, तुम तो शांति के दूत हो। वो बीच में बाबा नहीं अगर आया, योग बाबा से नहीं है, तो फिर माया पर जीत नहीं होगी। और योग किनका लगेगा? जो आत्मिक स्थिति में होंगे, अपने को आत्मा समझे बगैर ना शांति का गुण, ना पवित्रता का गुण, ना फिर शक्ति कैसे, कनेक्शन ही नहीं जुटेगा तो शक्ति कैसे मिलेगी, तो बार बार हार खाते रहेंगे ना। तो परमात्मा शक्ति उन आत्माओं में बाबा भरते हैं अथवा अपना स्वरूप बना करके उस आत्मा को उस समय, जैसे कोई स्विच ऑन कर दो तो ठंडक, गर्मी है वो ठंडक होना शुरू हो जाएगी ना, पंखा चल जाएगा तो गर्मी में, ठंड है हीटिंग ऑन कर दो, वातावरण बदल जाएगा ना। तो अभी अगर हमको मुझे परमात्मा के साथ, हमको तो पहले पता नहीं था कि हमको कोई स्वर्ग का राजभाग मिलने वाला, हम तो भिखारी बन के ही खुश होने वाले थे, ऐसे ही बोला था ना परसों चौथ बाबा ने कहा ना, देखो राजा का बच्चा अगर ये भूल जावे कि मैं प्रिंस हूं, वो भिखारी के रूप में है तो उसको ये आएगा ही नहीं कि मैं कोई अधिकारी हूं। भिखारी को तो मांगना आएगा ही नहीं अधिकार, वो ये कहेगा भगवान के नाम से कुछ पैसे दे दो, ये नहीं कहेगा कि मुझे। तो हमको बाबा ने ये स्मृति दिलाई, पहले स्मृति दिलाई कि तुम किसकी संतान हो, तो जिसके हम संतान हैं उनके संस्कार हमारे में भरे, तब तो हम कहेंगे सच्चे बच्चे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आम है, आम को देख के, आम के बीज से आम पैदा होएगा ना, आम के बीज से नींबू तो नहीं पैदा होएगा। तो अगर मैं पतित पावन परमात्मा की संतान हूं और मैं सच्चा बच्चा हूं, तो जब मैं पावन का पतित पावन बाप का बच्चा बना तो मुझे अपने आप में देखना है कि मेरे में पवित्रता कितनी है, पवित्रता की धारणा कितनी है, पवित्रता का महत्व कितना है, पवित्रता की अंदर वो शक्ति कितनी भर ली है जो मेरी मनसा में, वाणी में, कर्म में, व्यवहार में, विचार में, संस्कार में स्वाभाविक रीति से पवित्रता है, यानी दिव्यता है। स्वच्छता अलग चीज है। भक्ति मार्ग में जिसको पवित्रता कहते हैं वो समझते हैं व्रत रखा है, नहा धो लिया है, सब स्वच्छ रख लिया है, दो चार दिन किसी चीज का नियम व्रत रखा, समझेंगे पवित्रता है। स्वच्छता और पवित्रता में अंतर है। टेम्पररी किसी चीज का व्रत रख करके वृत्ति नहीं बदलती, वो टेम्पररी अपने आप को सिर्फ किसी कोई सिद्धि के लिए, सिद्धि के लिए व्रत रखते हैं, अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए व्रत नहीं रखते। तो हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो सच्चाई से अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना, दृष्टि को परिवर्तन करना, व्यवहार को परिवर्तन करना, मानस संस्कार को परिवर्तन करना। शेर का बच्चा जो है वो बकरी नहीं होएगा, शेर का बच्चा बकरी होएगा, और बकरी को शेर की शाल पहना दो, खाल पहना दो, शेर बनेगा। खुश करने के लिए बच्चों को जो जू में जो है वो भले शेर की खाल पहन करके बकरी भी खड़ी हो जावे, शेर तो नहीं बनेगा ना, शक्ति वाला। तो ऐसे हम आत्माएं अपने आप को देखें कि मेरे में सिर्फ बाहरी रूप की ड्रेस ब्राह्मण है, या सचमुच मैं बाबा का बच्चा शिव की संतान जब ब्राह्मण बना हूं तो मेरे जो संस्कार रूपी ड्रेस है, संस्कार की ड्रेस, वो मेरी जो बिल्कुल जो ईश्वरीय संस्कार जो है, ज्ञान भी है तो शांति भी है, प्रेम भी है, पवित्रता भी है, आनंद भी है, शक्ति भी है। अब वो उनका स्वरूप बनने के लिए रूप बन जावे, स्वरूप ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, तो रूप जो बन गया ना वो सदा साथ रहता है। जो शक्ल बन गई, शक्ल जो है वो एक दिन की नहीं होती है, रूप एक दिन का नहीं होता है, भले छोटे से बड़ा हुआ परंतु फीचर्स वही रहेंगे। ये नहीं है बदली होते भी पहचान रहेगी, हाँ इसका बचपन का चेहरा ये है, परंतु फिर भी कितने समय के बाद भी, 20 साल 30 साल के बाद भी मिलेंगे, पहचान आएगी ना फलाना है। बुढ़ा भी हो जाएंगे ना तो भी याद रहेगा ये कौन है। रूप तो भले देखने में बेशक बॉडी बड़ी बूढ़ी हुई पर रूप वही है, परिस्थितियों से शरीर ने कितने कितनी भी शरीर परिस्थितियों से, शरीर के बीमारी के कारण, कोई परिस्थिति के कारण, कोई एक्सीडेंट के कारण, कोई चिंता के कारण, भले बहुत सारी परिस्थितियां आई परंतु रूप फिर भी पहचाना जाएगा कि ये कौन है। तो हमारे पास जो गुण है, कैसी भी परिस्थिति आवे, हमारा गुण जो है ईश्वरीय गुण, चाहे शांति का, चाहे प्रेम का, चाहे पवित्रता का, वो ही रहे, उसके लिए बाबा ने हमारे लिए, ताकि जैसे भक्ति मार्ग में यादगार है, तो भक्ति मार्ग में क्योंकि ब्राह्मणों ने वो धारण किया है, भक्ति मार्ग में वो यादगार बनाई है। थोड़े समय के लिए व्रत रखना, थोड़े समय के लिए प्रतिज्ञा करना, थोड़े समय के लिए कोई व्रत रख करके, सप्ताह रख करके उसकी धारणा करना, नियम और मर्यादाएं बनाई है। पर वो नियम और मर्यादाएं जो बाबा ने हम बच्चों को बनाई, वो हमारा स्वरूप बनाने के लिए बनाई। जो भी ईश्वरीय नियम है व मर्यादाएं हैं, वो हम उन गुणों का स्वरूप बन जावे, क्योंकि रोज रोज बार बार करते रहेंगे तो वो धारणा बन जाएगी ना, वो अंदर टिक जाएगा। कोई भी चीज अंदर जो है पक्की सच्ची तरह से मान लिया, वो अंदर बैठ जाती है। नेगेटिव भी बैठ जाती है, पॉजिटिव भी तो बैठ सकती है ना, और बैठती है। लॉ यही है, जिस चीज को बार 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 हम यूज करते हैं, वो हमारे लिए यूज करते 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 वो हमारा एक जैसे उसका स्वरूप बन गए। जैसे अभी बॉडी को यूज करते हैं, करते 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 बॉडी का प्रभाव इतना हमारे पर आ जाता है, द्वापर से लेके देह अभिमान से शरीर को यूज कर रहे हैं, शरीर भान को यूज कर रहे हैं, तो जो शरीर के तत्वों का प्रभाव है वो आत्मा पर पड़ जाता है। आकर्षण है, समझो शरीर धरती में आकर्षण है, तो एक दो को देह देखते देह का आकर्षण, नर नारी, पुरुष स्त्री, मेल फीमेल, ये प्रकृति के प्रभाव में आने से हम आत्माएं जो जो बाहर की चीजें हैं, जो वास्तव में जिसको बाबा ने कहा ये विस्मृति की चीजें, हम बार बार स्मृति में लाते रहते हैं, उसका स्वरूप बन जाते हैं। जिस बात को भी भूलना है उस बात को ज्यादा याद करते हैं, भूलने वाली चीज को ज्यादा याद करते हैं, बेकार की चीज को ज्यादा संभाल के रखते हैं, कहते हैं ना बेकार है, फालतू थी, रबिश है, और बेकार है और उसको बार बार यूज किया तो उस बेकार को यूज करने का संस्कार बन गया ना। तो जो जो शुद्ध चीज है उसको बार बार यूज करेंगे तो शुद्ध करने की शक्ति आ जाएगी ना। सच्चा फिर भी सच्चा रहेगा क्योंकि उसके अंदर स्वच्छता के साथ साथ एकदम लाइटनेस और लाइट रहेगी। एक बार बाबा ने कहा था सतो प्रधान का मतलब है, गोल्डन एज का मतलब है सच्चा सोना। और सच्चा सोना माना उसमें किसी भी प्रकार की अलॉय नहीं मिक्स है, खोट नहीं मिक्स है। बाकी अगर चांदी है और चांदी पर सोना कब चढ़ा दो, बाहर से तो धोखा दे, कोई समझेगा सोने का जेवर है। पर कितना भी कहेंगे सोना तो नहीं हुआ ना, सोने का पानी चढ़ा हुआ है, वैल्यू तो उसकी सोने की नहीं है ना। तो अगर हमने सिर्फ एक नाम रखने के लिए कि मैं ब्राह्मण हूं और मैंने सिर्फ बाहर का स्वरूप उसको अब टेम्पररी बना भी लिया, मेरी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, अंदर की शक्ति नहीं बढ़ेगी। तो भगत ज्ञानी नहीं, ज्ञानी भगत नहीं, यानी भक्ति में हमको ज्ञान है, हमको शुद्धि रखनी है, पर ज्ञानी तो आत्मा नहीं बने हैं। तो अभी अपने आप से पूछे कि मैं सचमुच सच्चा बाबा का बच्चा हूं, दिल से प्रतिज्ञा की है, जो बाबा ने हमको मर्यादाएं दी हैं, नियम बनाए हैं, मैं सिर्फ कोई कोई ये भी कहते हैं परिस्थिति ऐसी है ना, परिस्थिति है तो तबीयत खराब है, कोई प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम है, उनके लिए बाबा को भी एक्स्ट्रा प्यार है और एक्स्ट्रा पावर है, क्योंकि उनकी उनके वाइब्रेशंस दूसरों को पता चलते हैं सच्चा, बहाना नहीं बना रहे, कोई फिर बहाना बनाते हैं वो पता चलता है ना। और कोई फिर जो है परिस्थिति कैसी भी हो, दूसरे कहेंगे नहीं करो, पर अपनी हिम्मत से सच्चाई में दृढ़ता में लाएंगे, फर्क है। यानी अगर अपने दिल से जो कर रहे हैं तो दूसरा कहेगा तुम नहीं करो, वो कहेगा नहीं मुझे तो करना है। परिस्थिति है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो भी अपनी मर्यादा नियम के पक्के रहेंगे। क्यों? कि मन तथा कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया है। जो कच्चे हैं उनका मन तथा कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। तो ब्राह्मण मतलब मन मना भाव होते होते मन पर कंट्रोल हो जाएगा ना। तो अपने आप से पूछना है, बाबा का तो प्यार मेरे में जो बहुत प्यार है, प्यार का सागर है, पर मैं अपने आप को कितना प्यार, मैं प्यार का स्वरूप कितना बनाऊं? परिस्थिति में स्वस्थिति में कितना टिका हूं? बाबा ने कहा है बच्चे, अभी दो तरह की बातें हैं। एक है हमने अपनी जिम्मेवारी से अपने जीवन को परिवर्तन करना है, दो बातें अपनी जिम्मेवारी से अपने जीवन को परिवर्तन करना है, और दूसरा बाबा कहते हैं बच्चे सारी जिम्मेवारियां मेरे को छोड़ दो। वो किस किस बात में? दो चीजें हैं, बच्चे सारी अपनी जिम्मेवारी मेरे पर छोड़ दो। तो हम कहेंगे अच्छा भगवान को देना, पवित्र बनाना होगा ना तो हमको बनाएंगे, बाबा को मेरे को उठाना होगा ना तो ऐसी परिस्थिति आएगी जो मेरे को छुट्टी मिल जाएगी। बाबा को ऐसा करना होगा ना, तो ये तो उल्टा हो गया ना, मिस यूज करने वाली बात हो गई ना। तो किन बातों को मुझे बाबा पर छोड़ना है और किन बातों का मुझे अपने आप जिम्मेवार बनना है। जिसको बाबा ने कल आज की मुरली में था ना, चतुर सुजान बच्चे, यानी बाबा को चतुर सुजान का मतलब है होशियारी दिखाते हैं, है ना, होशियार हैं, कर नहीं सकते कहेंगे, ड्रामा में होगा तो करेंगे ना, समय आएगा तो कर लेंगे ना, सब कोई कर थोड़ी ही सकता है, या फिर बाबा की इच्छा होगी, जैसे भक्ति में कहते हैं ना, भगवान की इच्छा होगी ना तो हम जरूर आएंगे। आप नमो को कहते हो ना, आओ, अगर परमात्मा की इच्छा होगी ना हम जरूर आएंगे, कोर्स करेंगे। आप शुरू में उनको कहो ना, यही बोलते हैं ना, नहीं ड्रामा का तो उनको पता ही नहीं है ना, ड्रामा का तो पीछे पीछे जब ब्राह्मण बन जाते हैं तो कहते हैं ड्रामा में होगा तो आएंगे, पर जो नवे हैं वो यही कहते हैं भगवान की इच्छा होगी तो हम ये जरूर करेंगे, और कई तो इंशाअल्लाह, हर जो चीज में इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, पर नहीं करना है इसलिए इंशाअल्लाह, समझा, या कहेंगे आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूंगा, परंतु उसका मतलब है कि मैं नहीं आऊंगा। ये जो भी कहते हैं ना आई विल ट्राई, उनको पता है मुझे आना नहीं है पर ना करना ठीक नहीं है। तो ऐसे कई ब्राह्मण बच्चे भी बाबा के बच्चे बन गए, परंतु ऑनेस्टी से देखे कि मैं सचमुच पुरुषार्थ कर रहा हूँ। सच्चा बच्चा जो है वो सच पर साबराजी है, फिर सब प्रकार की शक्तियां मिलती हैं। परंतु फिर ये भी है जो सच पर चलते हैं वो टेस्ट भी उनके पास बहुत आते हैं। ऐसे भी नहीं है कि उनके पास कोई विघ्न नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा, विघ्न उनके पास ही आएंगे जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी नहीं उनके पास एग्जाम क्या आएगा। हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं निर्विकारी बनने की। क्या है हमारी पढ़ाई? देवता बनने की पढ़ाई है ना, मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई है। तो देवता बनने की पढ़ाई का मतलब क्या? हम चार सब्जेक्ट तो कहते हैं, वो मैं आपसे रिपीट नहीं कराती, वो तो सबको पता है। ज्ञान सब्जेक्ट है, योग सब्जेक्ट है, धारणा सब्जेक्ट है, सेवा सब्जेक्ट है। मैं उसकी बात नहीं, वो तो आज भी बाबा ने कहा सेवा तो पीछे, सेवा पहले नहीं, सेवा पीछे है, भक्ति मार्ग में सेवा को पहले रखते हैं। शंख चक्र गदा पदम धारी तुम्हारी जय, शंख को पहले रखते हैं। तो शंख तो सेवा का चिन्ह है ना, जो विष्णु जी के चार अलंकार हैं, ये चार हाथ है ना, चार अलंकार हैं, चार अलंकार में चार चीजें हैं। एक है सुदर्शन चक्र, तो वो स्वदर्शन चक्र स्वयं का और सृष्टि चक्र का और परमात्मा का ज्ञान, ये ज्ञान का सब्जेक्ट है, रचता और रचना का ज्ञान, ये सब्जेक्ट ज्ञान है। फिर जो गदा है वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो योग है, योग की निशानी है, शक्ति, योग शक्ति, वो शक्ति की निशानी है। और कमल का फूल वो धारणा की, पवित्रता की निशानी है, धारणा की निशानी है, नष्ट मोह की निशानी है, न्यारा रहने की निशानी है, पवित्र जीवन की निशानी है। धारणा में फिर न्यारा, नष्ट मोह, पवित्र, लाइट, ये सारी धारणा में ये सब बातें आ जाती है। और फिर है शंख, मुख से जो भगवान ने सुनाया, जो हमको बनाया, उसका संदेश दूसरों को देना। आत्मा का संबंध परमात्मा से ज्ञान समझा के सुना के जुड़वा देना। उनको बाबा का बनाना, वो सेवा। सेवा में फिर तीन तरह की सेवा, संदेश देने की सेवा, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुड़वाने की सेवा, और तीसरी सेवा जीवन से जीवन बनाने की सेवा। ये तीन तरह की सेवा है। संदेश देने की सेवा तो कोई भी, समझो कोई नया भी आएगा ना, दो बारी एग्जीबिशन देख लिया, तीसरे बारी खड़े होकर एग्जीबिशन समझाएगा, बता दे। नवा भी कोई होगा, कोर्स किया होगा ना, तो किसी और को तो बता देगा। पर्चे बांटने की सेवा कर देगा, कोई सहयोग देने की सेवा करेगा। वो सेवा अनेक प्रकार की सेवा में, परंतु जीवन बनाने की सेवा और संबंध जुड़ाने की सेवा। तो जितना जितना योगी सहयोगी ज्ञानित आत्मा बनता जाता है, संबंध बाबा से जुड़ता जाता है। परंतु संबंध जुटने के बाद जब तक जीवन परिवर्तन नहीं किया है, धारणा की मूर्ति नहीं बनी है, तो नवा जीवन नहीं बना। आधा ब्राह्मण आधा शूद्र, कच्चा पक्का चलेंगे तो। जीवन का मतलब है फिर उनके जीवन से दूसरे का जीवन बने। परंतु सेवा में भी पहले जो है, सेवा का सब्जेक्ट बराबर है, चार सब्जेक्ट हमारे हैं, परंतु हमारी पढ़ाई में चार सब्जेक्ट में ज्ञान का अर्थ योग है बराबर, परंतु ज्ञानित्व आत्मा यानी ज्ञान को धारण कर ले। मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान मिला, हम उस ज्ञान स्वरूप में, हम आत्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये ज्ञान मिला, तो मेरे में शांति का गुण कितना आया, वो जीवन का स्वरूप कहा जाएगा, धारणा कही जाएगी ना। प्रेम का सागर परमात्मा है, तो मैं आत्मा परमात्म श्रीमत से प्रेम करके अपनी आत्मा प्रेम स्वरूप में आत्मा कितनी बनी हूं। शांत स्वरूप होगी तो धीरज स्वरूप होगी, तो पवित्र स्वरूप होगी, तो प्रेम स्वरूप होगी। तो उसमें पहला जो है हमारी पढ़ाई है सर्व गुण संपन्न बनने की। तो सर्व गुण संपन्न में, सर्व गुण संपन्न बनने की, सर्वशक्तिमान का बच्चा सर्वशक्ति संपन्न बनने की। तो अभी अपने आप से पूछे कि सर्व गुणों में मेरी धारणा कितनी है। ज्ञान की, ज्ञान जो है, ज्ञान समझना अलग चीज है, ज्ञान सुनना अलग चीज है, ज्ञान सुनाना अलग चीज है, ज्ञान का स्वरूप बनना। ज्ञानी तो आत्मा बाबा को प्रिय है, तो ज्ञान का स्वरूप माना सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कि पहला ज्ञान में आत्मा हूं ना, मैं आत्मा देह से न्यारी हूं, तो देह से न्यारी आत्मा को दूसरी देह का आकर्षण नहीं होएगा, पवित्रता अपने आप आएगी। आत्मा परमात्मा की संतान हूं, भाई भाई हूं, ये धारणा हो गई, भाई बहन है ये धारणा हो गई, तो विकारी दृष्टि होएगी, विकारी वृत्ति होएगी। वो ज्ञान की धारणा, ज्ञान का स्वरूप बन गए, जबकि ज्ञान मिला मैं आत्मा हूं, कहने में तो मैं आत्मा हूं, किसकी संतान हूं, परमात्मा की संतान हूं, ये किसकी संतान है, परमात्मा की संतान है। अच्छा, आत्मा भाई भाई है, अब ये शब्द तो हमने बोला, जब तक मैंने अभ्यास नहीं किया और दूसरे को आत्मा नहीं देखा, बीच में परमात्मा को नहीं रखा, योग नहीं हुआ, तो मेरी अपनी सर्विस भी नहीं है, दूसरों की सर्विस भी नहीं है। तो हम ये जो कहने का मतलब है, जो हमारी धारणा का मतलब, जो पहले हमने शुरू में ज्ञान लिया वो हमने जैसे किताब पढ़ी, अभी चलते चलते धीरे धीरे वो सिर्फ ऐसे हो गया जैसे कि रिपीट करने का शब्द रिपीट करने की बात हो गई, थोड़ा लापरवाह हो गए, केयरलेस हो गए उसको उसको होल्ड करने की, उसको धारण कर रखने की। तो बहुत थोड़े परसेंटेज, यानी ज्ञान तो है उसकी धारणा का रूप शक्ति स्वरूप परसेंटेज कम हो जाता है। तो फिर अगर हम कमजोर हैं तो आज वाली बाबा ने कहा ना यथा शक्ति सितारे हैं, तो अभी कौन से सितारे हो, शक्तिशाली सितारे या यथा शक्ति सितारे। धारणा का मतलब सर्वशक्तिवान शक्तिशाली सितारे। ये था आपको ध्यान में आई थी आज की मुरली की पॉइंट, मैंने पहले से उत्तर बता दिया ना, इसीलिए जब आप मुरली में देखेंगे तो ये जो यथाशक्ति कहा ना, यथाशक्ति माना कमजोर, यथाशक्ति माना जितनी मेरे में ताकत है उतनी कर सकता हूँ। जैसे गिलास है, गिलास में उतना ही पानी आएगा ना, इसमें अगर लोटा भरे इसमें अगर समझो दो लीटर पानी डालेंगे तो नहीं जाएगा ना, तो गिलास की शक्ति इतनी है, इतना बड़ा ही है बस इतना ही पानी ले सकता है, गागर नहीं इसमें आएगी, सागर नहीं आएगा। तो आज बाबा ने यथाशक्ति जो कहा मतलब कमजोर आत्मा, लिमिटेड शक्ति वाली। पर लास्ट में अगर आप फिर से मुरली पढ़ना तो जो सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं हैं उसमें फिर सब शक्तियां, कोई चीज की कमी नहीं है, ज्ञान भी है तो शांति भी है, प्रेम भी है, पवित्रता भी है, उसके आधार से विकारों को नष्ट करते हैं। विकारों को नष्ट करने की शक्ति, कमजोरियों को नष्ट करने की शक्ति का मतलब क्या, शक्ति का मतलब परिवर्तन। तो सर्व शक्ति का मतलब है कि सर्व अवगुण, सर्व कमियां, सर्व कमजोरियां, अब उनको उनका तरीका फिर क्या है कम खत्म करने का, एक एक ऊपर एक्स्ट्रा अटेंशन, एक एक चीज पर एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे। मिसाल के तौर पर अभी हमको बाबा ने यह नियम बनाया, भाई सुस्ती का संस्कार है तो बाबा ने नियम मर्यादा बनाया भी सवेरे उठ करके अमृत वेले उठना है, ये नियम बनाया। तो नियम से करते करते फिर आदत पड़ गई ना, फिर किसी समय शरीर तभी बीमार है उठ नहीं सकते, फिर भी आंख खुलेगी जरूर, फिर जो है कोई किसी पे फिर ये थोड़ा चेक करना होता है, फिर आलस का, फिर उठी आंख खुली आलस तो नहीं आ गया, फिर इसलिए चेकिंग भी चाहिए, अपने ऊपर अपना चार्ट भी ठीक रखना चाहिए। तो अपने आप मुझे मेरी जिम्मेवारी है, दूसरे पर जिम्मेवारी देने की बात नहीं है, हमको चांस थोड़े ही मिलता है जो हम आगे बढ़े, हमको थोड़े ही इस प्रकार की परिस्थिति यानी अपॉर्चुनिटी मिली है जो हम नहीं, किसी दूसरे की बात नहीं, खाना मेरे लिए कोई और खाएगा क्या, पका भी कोई देवे खाना तो मुझे ही पड़ेगा, खिला भी कोई देवे पचाना तो मुझे ही पड़ेगा। तो शक्तिशाली बनना है तो मुझे अपनी जिम्मेवारी अपने आप लेनी है, और उसके लिए मैं जितना खुद अपने से ऑनेस्ट हूं ना और सच्चाई से बाबा के लिए सच्चा सा वफादार हूं, तो हमारा जो बाकी गुण है, सहनशीलता है, मधुरता है, शीतल स्वभाव है, जेनरोसिटी है, वो पीछे व्यवहार के गुण है, समझा। एक होता है ना शीतल स्वभाव है, बड़ा रहम दिल है, जेनरस है, सहयोगी है, कर्म योगी है, वो पीछे बाद में बाकियों के साथ जो हमारे व्यवहार के गुण हैं, पर जो संस्कार वाले गुण हैं वो परमात्म गुण है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जो हमारी परमात्मा की शक्ति के बच्चों के संस्कार परमात्म गुण वाले हैं। और वो परमात्म गुण कौन से है? परमात्मा का गुण कोई सहनशीलता की बात तो नहीं है ना। परमात्मा का गुण ज्ञान, ज्ञान का मतलब आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्थिति। देह नहीं हूं, शरीर शरीर से न्यारी हूं। आत्मा के ज्ञान से फिर परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की संतान हूं। तो जैसे परमपिता परमात्मा बार बार अपनी पहचान देते, मैं शरीरधारी नहीं हूं, मैं परमपिता परमात्मा हूं, मैं कल्याणकारी हूं, उसी स्वरूप में अपनी पहचान उस गुण का स्वरूप बन करके दे रहे हैं ना। तो मैं भी उस ज्ञान का स्वरूप बन करके मैं देह से न्यारी आत्मा हूं। चलते फिरते उठते बैठते फिर से अभ्यास करें, शांत स्वरूप आत्मा हूं। अभ्यास करेंगे तो फिर मैं शरीर से न्यारी वाणी से परे निराकारी स्थिति में, जैसे मैं निराकारी आत्मा, संकल्प भी नहीं है निराकारी वतन में, तो बुद्धि का कोई किसी भी प्रकार का कोई चिंतन नहीं है। संस्कार जैसे जो जो आत्मा का स्वरूप है स्थिर है, स्थिर है, कोई हलचल नहीं है। तो निराकारी वतन में तो मन बुद्धि संस्कार एकदम शांत है, जैसे बीज जो है उग नहीं रहा है। बीज में ताकत तो है, फल है, पर उगता नहीं है ना। तो निराकारी स्थिति में संकल्प उठेगा नहीं, परंतु हम साकार में हैं, शरीरधारी हैं, तो मन में संकल्प उठेगा, परंतु संकल्प को ज्ञान से शुद्ध बनाना है, यही अभ्यास करना है। परम धाम में तो आत्माएं जो जितनी समय परम धाम में रहती हैं, वो गुण सोल सोल कॉन्शियस में उतरती हैं, तो सोल कॉन्शियस का अभ्यास उनका नहीं होता, गुणवान नहीं बनती है, कमजोर आत्माएं हैं। परंतु शरीर में रह करके हम अभ्यास करें तो शक्तिशाली कहे जाएंगे ना। शांत स्वरूप आत्मा, अशांति के वातावरण में मैं अभ्यास करूं, मैं शांत स्वरूप हूं ना। देह के आकर्षण में मोह ममता से न्यारे होकर के मैं अभ्यास करूं तो मैं नष्ट मोह आत्मा हूं ना। इस अपवित्रता के आकर्षण में, जिसमें अपवित्रता में वैर है, विरोध है, क्रोध है, नफरत है, रिजेक्शन है, ये सब अपवित्रता की निशानी है, अस्वच्छता की निशानी है। उसमें रहते मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, क्षमा स्वरूप, रहम तिल, वो फिर मेरी पवित्रता मानी जाएगी ना। गंदगी में फूल गुलाब का खिले तो खुशबूदार माना जाएगा ना, कीचड़ में कमल रहे तो उसको न्यारा कहा जाएगा ना। तो ये पवित्रता संगम की बात है, जबकि बिल्कुल सभी आत्माएं अपवित्र बन जाती हैं तो हमको पवित्र बनना है। तो मेरा कहने का मतलब, जो परमात्मा के गुण हैं उन गुणों की धारणा, फिर उन गुणों की धारणा से हमारे ऑटोमेटिकली, क्योंकि फिर परमात्मा के गुण किस लिए, कल्याण के लिए है। परमात्मा के गुण किस लिए, आत्मा में शक्ति भरने के लिए है। तो वो शक्ति आत्मा में जब भर जाती है तो दूसरों की जो अवगुण है, अथवा उस दूसरों का जो अटैचमेंट है, अथवा दूसरों का जो खिंचाव है, उस पर मेरा असर नहीं, मुझे मेरा खिंचाव नहीं होएगा, मेरा मेरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे फायर तो है, पर मैंने अगर फायर प्रूफ ड्रेस पहन ली तो आग तभी बुझा सकती हूँ जब फायर प्रूफ ड्रेस डाली हुई हो, आग तभी बुझा सकती हूँ जब पानी मेरे पास हो। तो ईश्वरीय ज्ञान गुण प्रेम पवित्रता की शक्ति होएगी तब दूसरों के अवगुणों को मैं खत्म कर सकूंगी। तो धारणा का सबूत क्या है, जो परमात्म शक्तियां वो मेरे में आवे। और परमात्म शक्तियां कैसे आएंगी, योग से। तो योग और भोग इकट्ठा तो हो नहीं सकता। किसी भी प्रकार का विषय भोग है तो वो उसमें काम विकार भी है, तो क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, वो और गुण इकट्ठे रह नहीं सकते। चलो थोड़ा भी कोई कह नहीं है नहीं, परंतु थोड़ा सा अभी अभी दुनिया के आकर्षण में है, पर मेरे पास मटका दूध का भरा हुआ हो, एक बूंद सिर्फ जहर की पड़ जावे, कोई हर्जा थोड़ी है। मैं मटका दूध का है, बाल्टी तो दूध की है ना, सिर्फ एक बूंद तो जहर की है, चलेगा काम? वो एक बूंद सारे दूध को जहर बना देगी ना। तो वो जो ब्राह्मण जीवन की खुशी है, अगर एक भी कमजोरी विकारी जीवन वाली आई तो खुशी खत्म हो जाती है। अंदर अपने अंदर जो है वो अपने से जो प्यार और अपने लिए स्वमान है वो नहीं रहेगा, खुशी को मार देती है, स्वमान को मार देती है। जैसे जहर मार कितना भी हो मार देगा ना, इंसान नहीं जिंदा रहेगा ना। तो हमारी वो खुशी जिंदा नहीं रहती, हमारी वो शक्ति जिंदा नहीं रहती। तो हमको अमर बनाने के लिए बाबा हमको ये गुणों में ज्ञान शांति प्रेम पवित्रता का अभ्यास कराते हैं, अथवा रोज नियम मर्यादा का पक्का करवाते हैं। तो फाउंडेशन हमारी पक्की होनी चाहिए। पुरानों की पक्की हो जाती है तो लापरवाह हो जाते हैं, नयों की नहीं पक्की होती समझते हैं कर लेंगे ना, थोड़ा बन जाएंगे तो बन जाएंगे तो ठीक है, त्रेता में आ जाएंगे, द्वापर में तो आ जाएंगे, कलयुग में थोड़े भिखारी बन करके रह जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसा है क्या? नहीं, मतलब जितना धारणा पहले से ज्यादा होएगी, मेरा कहने का मतलब है कि जितनी हमारी धारणा शुरू से होएगी, हम शुरू से पहले सुख का अनुभव करेंगे ना। आते ही जिन्होंने धारणा पक्की कर ली वो पक्के हो जाते हैं। अगर बचपन में किसी भी बात में कोई हैंडीकैप्ट रह गए तो हैंडीकैप्ट ही रहते हैं, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जैसे जो समझो बचपन में किसी भी प्रकार की कोई शरीर की अंग की कमजोरी रही ना, बहुत मुश्किल से मिटती है। तो कोई भी संस्कार हमने अगर अपने जीवन में आने के बाद थोड़ा समय रहने दिया, फिर वो हमारा पक्का पक्की कमजोरी हो जाती है, वो मिलता नहीं, फिर हम उसको संस्कार कहते हैं। परंतु वास्तव में संस्कार नया नहीं बनाया तो पुराना ही काम करता रहेगा ना, बीमारी चलती रहेगी ना। तो इसलिए अपने पर रहम करना है, रहम होता है पीछे, तो परमात्मा को भी ऐसी आत्माओं पर रहम पड़ता है। फिर प्यार नहीं मिलता, रहम करता है जो पहले से ही कर लेते हैं। जैसे परमात्मा का प्यार है पहले से सब कुछ देता है, और हम आत्माएं भी पहले से, जब से बाबा के बच्चे बने, कोई के कहने से पहले हम अपने आप ऑनेस्टी से अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, तो खुद के लिए भी प्यार होता है, सम्मान पैदा होता है, दूसरों को भी प्यारे लगते हैं और परमात्मा को भी प्यारे लगते हैं। क्यों? बिना किए कर लिया, दूसरे को देख करके कर लिया, तो वो फास्ट कहेंगे ना, तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे ना। तो अपनी धारणा तो परमात्मा को, परमात्मा की महिमा तो अपरंपार है, पर जो बाबा के बच्चे न्यारे होते होके रहते हैं वो प्यारे बन जाते हैं। किस बात से न्यारे? अवगुणों से न्यारे ना, दुनिया से न्यारे, अवगुणों से न्यारे माना दुनिया से न्यारे होते हैं, विकारों से न्यारे माना दुनिया से न्यारे। तो हमारी तो जरूर हम दुनिया जैसे तो होंगे ही नहीं ना। अब दुनिया जैसे नहीं होंगे तो दुनिया जैसे चाहेगी वैसे हो ही नहीं सकता ना। इतनी मेरे में शक्ति चाहिए ना, फिर वो मेरे में शक्ति चाहिए कि मैं एक न्यारा हूं तो न्यारा ही रहूंगा ना। प्यारा बनना चाहता हूं तो जरूर दुनिया से न्यारा ही होकर के रहूंगा ना। तो फिर उसमें विरोध भी होएगा, अपमान भी होएगा, परिस्थितियां भी आएंगी, तो तेरी महिमा तो अपरम अपार है, किन के लिए, किस कौन गायन के, यानी किस परमात्मा की महिमा भी तब है जब हम उनके बच्चे लायक बन करके, उनका सपूत बन करके सबूत बाबा को दे रहे हैं। और कोई बातें ऐसी हैं जो हम बच्चे बाबा के बन जाते हैं, हमको हमेशा मदद मिलती है, सफलता होती है, आगे पता नहीं कैसे बाबा करण करावन हार करवा रहा है, बहुत अनुभव है उसके। वो भी फिर जो सच्चाई, जितने परसेंटेज हमारी सच्चाई है, जितना परसेंटेज हमारा सहयोग है, जितना परसेंटेज हमारा समर्पण है, उसका लख गुणा मदद मिलती है। अच्छा, फिर चलते चलते कभी कोई फिर बड़ी मुश्किल आ जाती है, चलते चलते जिस बात को हमने सहज जीवन में लाया वो परेशान करने वाली बन जाती है। उनके लिए बाबा कहते हैं अब वो जिम्मेवारी अपनी छोड़ के मेरे को दे दो। बाबा के बनने के बाद जिन्होंने अनुभव कर लिया बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ के, बाबा करण करावनहार है, बाबा मेरा शिक्षक है, बाबा मेरा टीचर है, बाबा मेरा साथी है, अब वो फिर जो कोई परिस्थिति आई, हर प्रकार के सुख का अनुभव किया, फिर भी कोई परिस्थिति आई तो बाबा कहते हैं रोज रात को ये भी एक नियम बनाओ, रोज रात को जो भी दिन में हुआ है ना, कल की ब्लेसिंग याद है ना, क्या थी कल की ब्लेसिंग, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, कोई भी परिस्थिति आई है, वो सब रात को सोने से पहले खाली होके सो जाओ। अब खाली होके सोने का मतलब क्या, मुझे उस संकल्प को जो मतलब कल भी नहीं हुआ था, ये परसों भी तो ये बात हुई, बहुत दिनों से ये बात हो रही है, तो मैं खाली नहीं हुई, हम उनको याद करके फिर सो रहे हैं, खाली नहीं है। वो आज का ड्रामा पूरा हुआ रिपीट नहीं होना है, जो आज हो गया, जो कल हो गया, वो ड्रामा रिपीट नहीं होना है इस जीवन में। मैंने कल वाली बात को याद करके, परसों वाली बात को याद करके बाबा को दिया भी सही, मैंने थोड़ा आधा अपने पास अभी रख लिया संस्कारों में, समर्पण स्वाहा, वो मेरा अभी जो था वो हिसाब पूरा हुआ, अब तक का जो हिसाब था ना वो पूरा हुआ। एक बारी हमने दादी जी से पूछा, अभी मेरा यहाँ क्योंकि लाइट से चार टाइम नहीं दिखाई पड़ता है ना, टाइम के हिसाब से तो टाइम पूरा हो गया है, तो मैंने दादी जी से पूछा, दादी जी इतनी सारी जिम्मेवारी आपके पास है, कितना बड़ा यज्ञ बढ़ता गया है और फिर भी आप इतनी लाइट रहती हैं, आपको नींद रात को आ जाती है? कहती हाँ, क्यों नहीं नींद आएगी। मैंने कहा कुछ सोच नहीं चलता है कि ये सब, ये कल इतने सारे प्रोग्राम है या कोई इतना सारी जिम्मेवारी तो है? कहा नहीं, मेरा ये नियम है कि मैं रोज रात को सोने से पहले ये दृढ़ निश्चय से सोती हूँ, आज का ड्रामा पूरा हुआ, अभी नेक्स्ट घड़ी सोने से पहले ही पूरा हो गया है, तो आज वाला ड्रामा तो मेरे साथ रात में होना ही नहीं है, कल वाला भी नहीं होना, कल वाला भी रात में तो नहीं होना है, कल ही होएगा ना, कल वाला ड्रामा ही कल होना है, आज वाला ड्रामा आज है, अभी रात क्या है, बाबा की याद में सो जाने का है, रात का ड्रामा ये है, काम समेट के बाबा की याद में सो जाने का है, आज का ड्रामा पूरा हो गया। तो मैं वो आज के ड्रामे को भी सोने से पहले समाप्त करके सोती हूँ, और कल का ड्रामा कल ही होना है, तो ये तो अज्ञानता है ना, जो कल वाला ड्रामा आज लेके आओ, तो इसीलिए मैं इसी संकल्प में सोती हूँ, तो निश्चिंत सोती हूँ, नींद आ जाती है। और कल बाबा ने कहा क्यों नहीं नींद आती है, होता है कभी शरीर के कोई ना कोई केमिकल की कमी होती है, कभी कोई मिनरल की कमी होती है, बॉडी का सिस्टम कुछ ऐसा होता है, पर तो उसकी चिंता फिर नहीं करे तो उठेंगे भी सही ना, बीच बीच में नींद फौरन आ जाएगी। एज का भी फर्क होता है, एज ऐसी है जो बॉडी के सिस्टम में हर दो घंटे वॉशरूम में जाना ही पड़ता है, पर चिंता किया ना तो वो चिंता किया तो वो चीज चिटप जाती है साथ में, चिंता नहीं करनी है। तो वो आत्मा को ऑटोमेटिकली और शरीर को भी शक्ति मिलेगी जो नींद नहीं आए, नींद जो है डिस्टर्ब नहीं होगी, और बॉडी को जितनी नींद चाहिए उतनी मिलेगी जरूर। तो कोई कोई ना कोई अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए या तो ज्ञान के मंथन करके सोए, ज्ञान का बाबा से रू ध्यान करके सोए, और अंदर कुछ खुशी का संस्कार भर के सोए, कोई ना कोई खुशी की बात याद करके सोए। तो फिर क्या होगा कि नींद नहीं भी आ रही है ना, वो परेशानी नहीं होगी कि नींद नहीं आई। आत्मा को रेस्ट मिलेगा, शरीर को भी रेस्ट मिलेगा। और प्रॉब्लम क्या हो जाती है, शरीर नहीं, नींद नहीं आ रही है तो शरीर को नींद नहीं चाहिए, पर आत्मा को तो रेस्ट दे सकते हैं ना। आत्मा का और शरीर का रेस्ट जो है, नींद आई तो बॉडी से आत्मा डिटैच हुई ना। तो मैं पहले से डिटैच हूं तो फिर मेरी खुशी बॉडी को डिटैच कर देगी ना मेरे से। तो चिंता नहीं करनी है, सोच ज्यादा नहीं करना है, कल वाली बात सोच के आज नहीं रखना। तो अपने आप को जैसे अपनी मदद अपने आप करनी है इसमें, जिसको बाबा ने कहा बाबा को दे के सो जाओ, फिर देखो बराबर उस निश्चय से सोए। या फिर कभी ऐसा भी होता है, अच्छा चलो साकार वतन से अब मैं चली वतन में परम धाम में, मैं आत्मा इस देह से भी न्यारी, संकल्प भी ना चले परम धाम में, तो संकल्प भी नहीं है, सोच भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है, मैं यहाँ नहीं सोती, परम धाम में सोती हूँ। कभी कभी हम हनुमों को कहते हैं प्लीज कार में नहीं सो, कर नहीं हम तो कार में, कर नहीं कार में सो जाते हैं ना इसलिए नींद नहीं आती है, कर नहीं हम कार में नहीं सोते, हम तो एक्टिव होकर चलाते हैं कार। मैंने कहा ये मेरा मतलब नहीं है, ये दिन भर शरीर की कार चलाई है ना, रात को गैराज में रख दो, रात को भी कार में सोए तो आराम कैसे होएगा। तो कार को गैराज में अपने बेड में रख के आप बाबा की लाइट गोद में सो जाओ, नींद आराम से आएगी। तो कभी कोई वैसे साधन चाहिए शरीर को आराम देने के लिए, परंतु साथ साथ साधना चाहिए ताकि मन को भी आराम मिले। बाकी किसी ने पूछा ये कर्मों के हिसाब किताब की बात क्या होती है, समझो मानो हम किसी से सेवा लेते हैं, फिर अगर हम सेवा लेते हैं उनको सेवा का कुछ रिटर्न नहीं देते तो हमारा हिसाब किताब बनता है। अलग अलग बात है, अगर हम प्रवृत्ति में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लौकिक में रहते हैं, तो इसमें लौकिक में अगर हम लेते और देते हैं तो जरूर है सब उनका रिटर्न हमको कुछ देना है। जैसे लौकिक में भी लेन देन का हिसाब किताब होता है ना, कोई शादी में आया आपने उसको सौगात दी, आप सोचेंगे भाई मैं जब तक नहीं दूं रहेगा बोझ, मुझे देना है। कोई का बर्थडे है उन्होंने आपको दिया, चलो हम भी उनके बर्थ में कुछ दे दें। ऐसे लौकिक में अगर हिसाब किताब कुछ कोई किसी भी प्रकार का हिसाब किताब है तो वो देना उनको भी खुशी और अपनी भी खुशी, संबंध को ठीक रखने के लिए। पर यज्ञ में कोई सेवा करते हैं, यज्ञ परमात्मा के प्रति, परमात्म यज्ञ के लिए, पर्सनल सेवा की बात अलग है। प्रवृत्ति में एक दो को डिपेंडेंट बना करके सेवा करना या सेवा लेना वो अलग हिसाब किताब है, और ईश्वर के यज्ञ में परमात्म यज्ञ में सेवा करना वो सेवा है। कोई नौकरी नहीं है जो पेमेंट चाहिए, नौकर को पेमेंट मिलती है, सेवाधारी को मेवा मिलता है, और यज्ञ को सेवा कहा जाता है, बाकी का हिसाब किताब होता है। तो ये भी जितना हमारा यज्ञ के प्रति स्नेह है, जितनी हमारी भावना है, जितना हमारा प्यार है, जितनी हमारी समय और शक्ति है, उस अनुसार दिल से होता है ना, उत्साह से होता है, उमंग से होता है, तो बाबा तो उसी समय दे देते हैं। वो जो रूहानी सुख संपत्ति देता है और आत्मा में शक्ति देता है, उसकी तो गिनती हो ही नहीं सकती ना कोई, उसका कोई, उसके लिए हम गिनती करें 50 यूरो है या 100 यूरो है या 500 पाउंड है, जीवन ही वर्थ पाउंड और हीरे बन जाता है ना, कर्म इंद्रियां शुद्ध बन जाती हैं। उसके लिए अगर हम देखें तो जो सेवाधारियों को बाबा बोलते हैं ना, सेवाधारियों के लिए बाबा बहुत अच्छी, जब भी मुरली चलती है सेवाधारी जो यज्ञ में सेवा करते हैं उनकी कितनी कमाई होती है, कर्म इंद्रियां शुद्ध होती हैं, परिवार में रहते सबका स्नेह मिलता है, सबके लिए उनके हृदय में शुभ भावना होती है, अपना जीवन कितना खुशी उमंग उत्साह में आ जाता है, एक दो के नजदीक आ जाते हैं। कभी कभी सेवाधारी सेवा जो करते हैं उनसे बाबा ने क्या बोला ये समझने सुनने से फिर अंदर सेवा करने का उत्साह उमंग बढ़ता है, दुआएं प्राप्त होती हैं, भाग्य भी बनता है। बाकी लौकिक में भाई कोई बोझ न रहे, एहसान न रहे, वो न रहे, बंधन न लगे, इसीलिए समझो रिटर्न में कुछ देना अच्छा है, ताकि चिंता न रहे कि भाई मैंने, एहसान होता है ना, मैंने तो ये किया तुमने थोड़ी कुछ किया मेरे लिए, इतना भी नहीं किया, तो वो अलग चीज, दोनों तरह का हिसाब किताब अलग तरह का है। अच्छा घड़ी के हिसाब से क्योंकि यह अंधेरा है ना, तो मैं समय जुटता तो अभी योग करें थोड़ी देर है। आने का ड्रामा में स्नेह ही कहेंगे, संबंध ही कहेंगे, शुभ भावना ही कहेंगे। मैंने सोचा हमको हमने पक्का तो किया था रक्षाबंधन पर आएंगे, क्योंकि हमारे से अपने परमजीत भाई ने मधुबन में आपकी तरफ से अपने हिंदू बहन और दीप बहन भूपेन भाई परिवार से सबसे मेरे को कहा था, दीपा बहन की तरफ से, बाबू भाई की तरफ से, दीदी इस वाली लश्टर वालों की ये इच्छा है कि आपको राखी वहाँ जरूर, राखी के लिए जरूर आना है, जो आप दिन देंगे ना वो मैं आऊंगी। फिर ये कहा जब भी आप लश्टर में आते हो ना आपके पास टाइम हो गया आपको जरूर आना, डबल बांध दिया, पहले राखी का बंधन, फिर कहा कि नहीं, तो मेरे को वो कन्वर्सेशन याद थी। दूसरा फिर मैंने कहा हमारी निर्मला बहन ने भी शरीर छोड़ा है, चलो अच्छा मैं एक शांति शुभ भावना के हिसाब से चलो जाऊंगी, इनको भी मिल लूंगी। फिर अपने मनु बहन की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने समझा चलो, तो एक कनेक्शन में कितने सारी बातें हो गई। तो परिवार के, तो आज जो आई हूँ वो ईश्वरीय परिवार के स्नेह में आई हूँ, अगले बार आऊंगी तो रक्षाबंधन के लिए, ड्रामा में जो होगा तो उसे तो ऐसा इस हिसाब से आज का आना ड्रामा में हमने कहा कि अच्छा मैं जर्नी बहन को कहा बता दो है मेरे पास टाइम है, तो टाइम तो बहुत बिजी था, बहुत बिजी, एक्चुअली बिजी को क्या कहे, इजी बहुत टाइम था, परंतु तो भी ड्रामा अनुसार आपसे मिलना था तो इसलिए आ गए, तो आज का ड्रामा कल्प कल्प का नूंद हो गया। ठीक है ना, अच्छा चलो।